ама гнянето ми рам дешек на мен, дежим шалар, пе, чак шорим, билите ми е, то си ме ищи го вене. Сви че идете на мен, дешкам, стапитам ли е, не бута ли е, че ем група, да, ми е, да, ди се удари. Да, е, дешкам, че идете на гръм, ни цяна, ми се, две, три, да, да, шала, са, ли, хор, пак, то. Хри, Кришна, Хри, Кришна, 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 तभी आंट से भगवान अलग अलग स्टेजेस बताते हैं टेक्स्ट नंबर 8 से. अभी तक हमने एक चर्चा किया था, पहले भगवान ने बताया, अर्जुन ने पूछा था कि निराकार वाला श्रेष्ठ है या साकार वाला श्रेष्ठ है, तो भगवान ने कहा कि स्वाभाविक ये मेरा ओपिनियन ऐसा है कि जो साकार की पूजा करने वाला है वो श्रेष्ठ है, तो निराकार का क्या होता है, निराकार वाला जो पूजा का उसका क्या होता है, वो भी मेरे पास ही आता है अंत में, तो वो अंत में मेरे पास ही आता है, तो फिर क्यों उसका मार्ग ठीक, तो फिर निराकार की पूजा करें या साकार की, नहीं निराकार का जो मार्ग है बहुत ही कष्ट वाला है, इसमें बहुत बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, और वो किसी देहधारी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग शरीर वाले हैं और हम ऐसे भूत की कल्पना कैसे करें कि इसको शरीर नहीं हो. ऐसे भगवान भगवान जिनका कोई रूप रंग आकार नहीं, ऐसा सोचना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है. तो फिर भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं, जो मुझ में जुड़े हुए, अर्जुन तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, जो मेरे भक्त है, जो कृष्ण भक्ति में जुड़े हुए हैं, जो मुझ में परायण है, जो मेरी चिंता कर मेरी ही सेवा करते हैं, उन लोग का मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ, बहुत जल्दी. भगवान ही ना चिरात पार था मैं यह अवश्य चेतसा, मुझ में चेतना जिसकी लगी हुई है उसको ज्यादा देर नहीं लगती. स्वयं भगवान इसका जिम्मेदारी लेते हैं ना. एक्चुअली हमारी समस्या यही है कि हम भगवान हमारी जिम्मेदारी लेने के, भगवान हमारे लिए कितने आतुर है, कितने चिंतित है, ये हमारा अनुमान ही नहीं, और हम सोचना भी नहीं चाहते इस विषय में. कि ऐसा नहीं है कि हमें ही भगवान की आवश्यकता है, भगवान ऐसा चाहते हैं कि हम उनके पास आए हैं. ऐसा नहीं कि भगवान को अपने काम में लगे हुए, हम अपने काम में लगे हुए, उनको तो वृंदावन में अपने गोप गोपियों से फुर्सत मिलेगी तब हमारे विषय में सोचेंगे ना. वो तो इतने बिजी पर्सनैलिटी है, अगर चलो वृंदावन की बात छोड़ो, नारायण की बात करें, नारायण तो पूरे सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, तो उनको भला हमारे लिए भला क्या टाइम होगा, ये सोचने वाले लोग भी. और फिर ऐसा सोचते गुरुजी तो, हमारे गुरुजी तो यू नो जीबीसी है या ये है या यू नो सेवा, बहुत सारी सेवा में जुड़े हजारों शिष्य उनके, तो हमारे ऐसे तुच्छ शिष्य के लिए भला उनके पास क्या टाइम होगा सोचने के लिए, यू नो वो कहाँ मैं कहाँ, वो अपने काम में लगे मैं अपने काम में लगूँ, हरे कृष्ण. तो इस तरह का सोचने वाला जो भक्त होता है वो न भगवान की मन की बात समझ सकता है, न गुरु के मन की बात समझ सकता. हालांकि भगवान अपने लीलाओं में व्यस्त होते हैं, लेकिन वो हर एक जीव के प्रति उतना ही उनका प्रेम है. उसी तरह से आध्यात्मिक गुरु भले किसी भी सेवा में लगे हो, लेकिन हर एक शिष्य के प्रति उनके हृदय में उतनी ही करुणा है जितने किसी और शिष्य के या किसी और भक्त के प्रति होती है. तो आपका आपके आध्यात्मिक गुरु से व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्ति और पर्सनल रिलेशन, उसी तरह से भगवान का और आपका एक व्यक्तिगत संबंध है, आपका इंडिविजुअल रिलेशन है. अभी आप भगवान को धोखा देना है तो धोखा दो, भगवान को अनसुनी करनी है उनकी बात तो अनसुनी करो, गुरु की अवज्ञा जो है गुरु के आदेश जो है उसकी अवज्ञा करना है तो अवज्ञा करो, ये आपका अपना आपस का मामला है. गुरु आपको आदेश दिया और आपसे रिसिप्रोकेट वो करेंगे. भगवान आपको हर एक जगह पर, अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे, भगवान आपको हर एक जगह पर सहाय करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि आपका मनोभाव उनके प्रति कैसा है, वो देखते रहते हैं. इसलिए ये नहीं सोचना कि हमारे कर्मों को देखने वाला कोई नहीं है, ये नहीं सोचना. और साथ ही साथ ये भी मत सोचिए कि हम बहुत ज़्यादा तुच्छ पतित गिरे हुए लोग हैं, बहुत पतित शिष्य, इसलिए गुरु को मेरे लिए क्या करुणा होगी, ऐसा भी मत सोचे। सो भगवान स्वयं आते हैं, हमारा उद्धार करते हैं, और अगर कुछ इच्छा करना चाहो आप, कुछ इच्छा करना है आपको, तो एक इच्छा करो। क्या इच्छा करो? कि गुरु ने, प्रभुपाद ने, कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु ने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ है हमारे पास, हरिनाम है, प्रभुपाद के ग्रंथ है, भगवान के विग्रह है, पूजा कर सकते हो, भोग ले खा सकते हो, इसको संस्था है, भक्तों का संघ है, ये सब है। तो हम, मैं कुछ उनके प्रति मेरा आभार का भाव कैसे प्रकट करूं? तो ये इच्छा आप कर सकते हो कि अपने जीवन को प्रभुपाद के मिशन के प्रति, प्रभुपाद के जीवन के प्रति समर्पित कर, प्रभुपाद की सेवा के प्रति, ये कर सकते हो, जिसमें आपके मन, बुद्धि, इंद्रियां, मनसा, वाचा, कर्मणा, ये तीनों ही आपको भगवान की, गुरु की सेवा में देना चाहिए। ऐसा इच्छा करो। फिजिकली आप कर सकते हो, मन से भी कर सकते हो, वाणी से भी कर सकते हो। अब जब इच्छा होगी तब कार्य होगा, जब इच्छा ही नहीं होगी तो कार्य कैसे होगा? कई बार हमें भक्त लोग कहते हैं, तो ये हम क्या करें, हम चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, कुछ हो नहीं सकता हमसे, बड़ी बड़ा ख्वाब देखते हैं लेकिन फिर होता नहीं वो काम, हमेशा फेल हो जाता हूँ मैं, प्लान बनाता हूँ होता नहीं कुछ। तो मैं कई बार उनको कहता हूँ कि आपकी इच्छा बहुत कमज़ोर है, आपकी कमज़ोर इच्छा आपके फेलियर का कारण है। अगर आपकी इच्छा में बल है तो वो अपने आप आपके कार्यों में दिखेगा। तो आप कहेंगे इच्छा को बलवान कैसे करें? इच्छा को बलवान कर सकते हो भक्तों की संगति से और प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ करके। इस तरह से इच्छा बलवान होगी आपकी सेवा करके, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। सो फिर भगवान ऐसा कहते हैं कि जो टॉप लेवल के, जो परफेक्ट, हाईएस्ट परफेक्शन स्टेज है, वो टेक्स्ट नंबर 8 में भगवान बताते हैं। पहले बताते उत्तम चीज, सबसे उत्तम चीज क्या है, ये करना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते ठीक है तो ये कर लो, अगर ये नहीं कर सकते ठीक है ये तो करो, ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम ये कर लो। इस तरह से भगवान बताते स्टेप वाइज। तो टेक्स्ट नंबर 8 पढ़िए।
मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे।
इसमें तीन बार भगवान बोलते हैं मुझे मुझे मुझे, है ना, मुझ में मन लगाओ, फिर मेरे में बुद्धि लगा दो, मुझ में ही परायण रहो, है ना, लास्ट में तीसरा क्या है,
मुझ में सदैव वास करो।
इसका अर्थ होता है कि मेरी भावना में रहो, इस तरह से अपने जितने भी कार्य है वो सब मेरे लिए, तो मेरी प्रसन्नता के लिए करो, मेरी चिंतन करते हुए कार्य करो, दैट इज भक्ति योग, ऑलवेज मेडिटेटिंग कृष्ण, निरंतर कृष्ण का चिंतन, जैसे यशोदा माता है और अर्जुन है, ऐसे ये लोग यशोदा माता को रोज सुबह सोलह माला जप करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कह रही यशोदा माता सोलह माला नहीं कर रही है, शी कैन नॉट बी यशोदा माता, सॉरी छोड़ दो, रिटायर, यू नो, डिसमिस, नहीं, वो निरंतर 24 घंटा कृष्ण का चिंतन कर रहे थे, ये सब नियमों से परे थे। वो मंगला आरती किया, मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं, इट्स नॉट फॉर यशोदा माता, और 24 घंटा भगवान का चिंतन करते थे। तो वो हमेशा उनके कुछ, जैसे प्रभुपाद 24 आवर्स दे, जैसे आप एग्जांपल बताया कि वो देखा ऐसा, तो प्रभुपाद ने सोचा, फिर एक बार प्रभुपाद कहीं से गुजर रहे थे तो उन्होंने कुछ CI ऐसा करके कुछ लिखा हुआ था बड़े बोर्ड पर, तो प्रभुपाद ने अचानक ऐसे ही पूछ ला पूछ कोई होटल का नाम था, तो प्रभुपाद ने ऐसे ही पूछ लिया क्या लिखा वो चिंतामणि होटल लिखा है क्या लिखा है. Then say no, no, it's not Chintamani, something else. But Prabhupada's consciousness was like this. Prabhupada nirantar Krishna ke vishay mein sochte rahe the. Jaise Madhavendrapuri. Madhavendrapuri ko akash mein agar ghane badal dikhenge to unko Krishna ka smriti hota hai aur lot pot ho jata hai zameen tak. Unme ecstasy prakat ho jata hai. Wo akash mein badal ko dekhte rehte. Immediately Krishna ko chintan karte. Madhavendrapuri. So actually, 24 hours serving Krishna. That is the highest perfectional stage. तो भगवान पहले बताया ऐसा करो. तो अभी कोई सोचेगा ऐसा कैसे करे. How is possible? हमारे हृदय में तो ऐसा आकर्षण नहीं है भगवान के प्रति. कभी सोचते भी होंगे कृष्ण को दिन में एक दो बार तो अच्छी बात है. ढंग से तो सोचते भी नहीं है. So बहुत एग्जॉल्टेड पोजिशन है. तो कोई अगर ये सोच सकता है कि अगर मुझसे ये कार्य अगर नहीं हो पाया, ये काम मैं नहीं कर सकता, सो क्या कर सकता मैं, दूसरा कोई ऑप्शन. ये तो सीधा आदेश दे दिया भगवान ने कि डू दिस एंड इफ यू कैन डू दिस बेस्ट, दिस इज द बेस्ट प्रोसेस. नहीं लेकिन नहीं हो सकता, आई कांट डू दैट, आई एम नॉट सो क्वालिफाइड. डोंट वरी अर्जुन, आई हैव अनदर ऑप्शन फॉर यू. नेक्स्ट.
हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो.
तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि तुम धनंजय हो अर्जुन, धनंजय का अर्थ है कि तुम धन का संचय किया था पहले, तो मेरे प्रति चिंतन करना वो भी एक बहुत बड़ा धन है, तो उसका भी तुम संचय कर सकते हो. लेकिन यहाँ पर भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम मेरे में मन लगाकर अपने काम करो, डू योर ड्यूटीज वर्क. अभ्यास योग का बात किया था भगवान ने पहले, तो चिंतन इस तरह से धीरे धीरे धीरे. एक्चुअली ये जो है ना प्रैक्टिस, 9 श्लोक जो है 9वां श्लोक, इसमें नवदा भक्ति की बात हो रही है, साधन भक्ति की बात हो रही है. साधन भक्ति जिसमें 16 माला जाप, मॉर्निंग प्रोग्राम, भागवतम क्लास, गुरु पूजा, मंगला आरती, वैष्णव सेवा, प्रचार की सेवा, वॉट एवर, नवदा भक्ति, श्रवणम आदि, श्रवणम कीर्तनम आदि, नवदा भक्ति, ये प्रैक्टिस वाला स्टेज है. प्रैक्टिस का अर्थ होता है अभ्यास. तो एक होता है रागा डूंगा भक्ति, स्पॉन्टेनियस भक्ति, और होता है एक प्रैक्टिस वाला. क्योंकि हम अभी कृष्ण का निरंतर चिंतन नहीं कर पा रहे, इसलिए हम मैकेनिकल प्रोसेस यूज कर रहे हैं कि हम अपने माइंड को फोर्सफुली एंगेज कर रहे हैं भगवान के चिंतन में, भगवान की सेवा में. श्रीमद भागवतम के कक्षा सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बैठना पड़ता है क्योंकि प्रभुपाद का आदेश है. प्रभुपाद ने कहा है कि भागवत क्लास में बैठो. मंगला आरती उठना 4:30 बजे अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रभुपाद ने कहा है 4:30 बजे मंगला आरती में आओ, इसलिए हम ये कर रहे हैं, ये बाय फोर्स कर रहे हैं. बट दिस विल हेल्प अस टू मेडिटेट. जैसे कोई व्यक्ति जब फिजियोथेरेपी करता है, उसके हाथ पांव को जकड़ गए, वो काम नहीं कर रहे, तो उसको मैंने देखा फिजियोथेरेपी बहुत हार्ड कोर करवाते हो, वो करना नहीं चाहता लेकिन उससे बाय फोर्स करवाता है, यू डू इट, फोर्स करके यू मस्ट डू इट, और यू विल सी व्हाट इज स्लैप हिम, व्हाट इज जस्ट डूइंग, यू नो. कई बार ऐसा होता है आपको गुस्सा आ जाता है अंदर से कि ये बदमाश आदमी कब से मुझे फोर्स कर रहा है, ये यू हैव टू डू, बट ही इज डूइंग फॉर यू, डू इट बोलेगा, बिकॉज ही नोज कि अगर आप करोगे बलपूर्वक तो फिर आपका जो ओरिजिनल जो मूवमेंट था वो वापस मिल जाएगा आपको, जो आपका स्वाभाविक स्थिति था वो वापस मिल जाएगा. इस तरह से वैष्णव गुरु या आपको फोर्स करते हैं, वो आपको नियम बनाते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य जो है वो है आपकी स्वाभाविक स्थिति को वापस लाना। ऑफ कोर्स कृष्ण कॉन्शियसनेस वॉलंटरी है, इसलिए आप किसी को मारपीट नहीं कर सकते। यू कांट फोर्स समबडी दैट यू मस्ट डू इट, बट फिर भी आपको गुरु और वैष्णव आपको समझाने का प्रयास कर सकते। दे कांट ऑर्डर यू, गुरु महाराज कैन डू इट, आपके गुरु है वो कर सकते हैं। देन ही कैन आस्क यू, ही कैन डायरेक्टली ऑर्डर यू कैन नॉट डू दिस, यू मस्ट डू दिस, ही कैन डू दिस बिकॉज ही हैज दैट कैपेसिटी, ही हैज दैट पावर। सो प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में, टू प्रैक्टिस द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योग वन शुड अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स। वन शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, टेक बाथ, एंटर द टेम्पल, ऑफर प्रेयर्स, चैंट हरे कृष्णा, देन कलेक्ट फ्लावर्स टू ऑफर टू द डीटी, कुक फूड स्टफ टू ऑफर टू द डीटीज, टेक प्रसादम, सो ऑन। देयर आर वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन विच वन शुड फॉलो। One should constantly hear Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam from pure devotees. The practice can help anyone rise to the level of love of God. Yeah. So, Shuddha Bhakto se Srimad Bhagavatam Bhagavad Gita sunte rehna, yeh bhi Prabhupada ka adesh hai. I mean, Prabhupada ne brief mein 3-4 line mein kisi bhakt ke liye roj karne ka kaam kya hai, woh minimum kaam bata diya. Yeah. What one should do. No. I was just reading one quote from my spiritual master. So, one bar, बहुत पहले एक बार ऐसा कहा था, and I was very much amazed to listen that. मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर के। वो लिख रहे थे। आई मीन ही वॉज सेइंग, वो कह रहे थे कि जब से मैं जुड़ा इस वन में तब से मैं जो सोचा वही किया, अर्थात मेरे माइंड ने मुझे कभी भी रोका नहीं कहीं पर, मेरे मन ने कभी रोका नहीं। जब मैं सोचा कि 4:30 बजे मंगलारती मैं करूँगा तो कभी अटका नहीं। I kept on doing it. And whatever Prabhupada's instruction was given to me, जो Prabhupada आदेश दिया और जो आदेश पालन करने का मैं सोचा, तो वो बिना रुकावट के मैं बड़ी आसानी से कर पाया। I mean something like, you know, it was easy for him, as per him, it was easy for him to decide something in Krishna consciousness. अर्थात मन को वश में लाने की आवश्यकता नहीं रहती थी, अपने आप काम कर रहा था। जैसे मैं सोचा आज तो 16 माला करना है तो 16 माला शुरू हो जाएगी और फिर हमेशा रहेगी। सोचा आज से मैं ये कायम बंद कर दूंगा तो फिर स्ट्रगल नहीं, बंद ही हो गया, फिनिश। सो देयर इज नो स्ट्रगल बिटवीन माइंड एंड अस, यू नो। सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग, वाओ, दिस इज वंडरफुल स्टेज व्हेन यू डोंट स्ट्रगल विथ योर माइंड, यू डिसाइड एंड यू डू इट। Yeah. And why to think so much? Decide and you do it. That's it. And so much strong determination. तो ये हमारा दृढ़ निश्चय इस तरह से कृष्ण भक्ति के प्रति दृढ़ होगा कि हम ये सारे कार्य करेंगे तो कृष्ण भक्ति अपने आप आसान हो जाएगी। रूप गोस्वामी कहते हैं, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधस्य एतयोरेव किंकर। जितने भी विधि डूज एंड डोंट्स है, जो भी विधि और निषेध है, वो सारे विधि निषेध का जो स्वामी है, जो उसका मालिक है, वो कौन है? हमेशा कृष्ण का चिंतन करो और कभी कृष्ण को भूलो नहीं। ये है मुख्य बात, बाकी सब इनके दास दासी है। ये मुख्य नियम है, बाकी सारे नियम इसके सर्वेंट्स हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर ये भी नहीं कर सकता साधन भक्ति भी, यू नो प्रभु जी आप तो एक फुल टाइम बनने की बात कर रहे हो, हम लोग तो कैसे करें, हम तो कमजोर है, इतना नहीं से कर सकते इतना सब काम, तो कृष्ण के लिए उसके पास का, उसके उसके बाद का ऑप्शन भी है। भगवान बोलते ठीक है, आई हैव अनदर ऑप्शन, डू इट। क्या है बोलिए?
यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करो प्राप्त होगे।
या तुम ये नवदा भक्ति को ठीक से पालन नहीं कर पा रहे हो तो मेरे लिए कर्म करो, निष्काम कर्म योग की बात हो रही है, अर्थात जो भी कर्म करोगे उसको अर्पण कर दो। पैसा कमा के भगवान को अर्पण कर दिया, सेवा प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हम इंद्रियों से शरीर से तो कोई बात नहीं, जो सेवा कर रहे हैं उनको धन दे दिया कि हम धन दे देते, डोनेशन दे दो। या फिर डोनेशन क्यों बता रहे हम, क्योंकि आप 8-10 घंटा यूज करते हो धन कमाने के लिए, तो उस 8-10 घंटे का अगर सदुपयोग कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो? उसका जो धन है वो किसी को दोगे तभी उसका ठीक होगा ना, वो उसका प्योरिफिकेशन कब होगा? अगर हम वो नवदा भक्ति वाले स्टेज में नहीं है और हम ढंग से इसका पालन नहीं कर पा रहे तो हमें धन है फिर कर्म है, जैसे भोजन बनाना, तो अगर आपका चिंतन नहीं रहता मन में नहीं रहता तो कोई बात नहीं, भोजन बन जाए तो फिर भोग लगा दो लास्ट में, तो कम से कम कर्म का परिणाम तो नहीं भुगतना पड़ेगा, है ना। अब प्रसाद ऑफर कर लो, भोग ऑफर कर प्रसाद खाया करो। तो जो हमने पहले सुना था कि यद करोशी यदश्नासी यज्जोसी तदासी, जो कुछ करते हो हवन करो ये करो सब मुझे अर्पण करके करो, अर्थात पहले कर्म फिर अर्पण, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। और भक्ति योग में क्या होता है, पहले चिंतन फिर कर्म, पहले भगवान का चिंतन फिर कर्म, और निष्काम कर्म है पहले कर्म फिर चिंतन फिर भगवान को अर्पण करो, ये इतना फर्क रहता है दोनों में। तो भगवान यहाँ पर स्टेप डाउन कर रहे, नीचे ले जा रहे, ये नहीं हो सकता ये कर लो, जिसमें कर्म कर लो उसके बाद फिर मुझे अर्पण कर दो, तो कम से कम फल से मुक्त हो जाओगे। और एक्चुअली इस प्रकार करने वाले व्यक्ति धीरे धीरे आगे के स्टेजेस तक पहुंच सकते हैं उस तक। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं इफ वन हैज सफिशियंट मनी He can help in building an office or temple for propagating Krishna consciousness. Or he can help with publications. There are various fields of activity and one should be interested in such activities. If one cannot sacrifice the results of his activities, the same person can still sacrifice some percentage to propagate Krishna consciousness. This voluntary service to the cause of Krishna consciousness will help one rise to help state of law, higher test of law, state of law for God, whereupon one becomes perfect. Prabhupada nishkam karma yog ke baad sakam karma yog ko bhi bol dete baad mein usi purport mein, isi mein bol diya na, one cannot sacrifice the result of his activity, the same person can still sacrifice some percentage, is sakam karma, kuch to kar sakta hai, something he can do. आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हो तो आप धन मांगते हो किसी से, हमारे कहीं भक्त कहते हो अरे प्रभु जी ये तो बिल्कुल भिखारी का काम कर रहे थे हमारे साथ, हाईवे के ऊपर जाते हो और बोलते हैं कि लो डोनेशन दो, भगवद गीता लो भगवद गीता लो, क्या सामने क्या देना है, जो आपकी इच्छा दे दो, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव बट गिव समथिंग, दिस इज टू मच, How I can do this? Sorry, I can't do this. मैं भीख मांगूंगा ना, आई एम इट्स सॉरी टू से बट इट्स इको प्रॉब्लम, नॉट सो कन्विंस दैट आई कैन ask something for the Lord. It's not convenience totally. That's okay. That's okay. That is there a problem with the understanding. What can we do? लेकिन आप उनका धन मांग के आप नीचे नहीं जा रहे हो, उनके चरण नहीं पकड़ रहे हो. हालांकि नितान तो बोलते खरीद लो. आप खरीद तो आप तो खरीद नहीं रहे हो ना, अपने आप को बेच थोड़ी रहे हो. नित्यानंद प्रभु तो कह रहे कि तुम चैतन्य महाप्रभु का एक बार नाम लो और मुझे खरीद लो. खरीद लो का अर्थ है आप बोलो बैठ जाओ तो बैठ जाऊंगा, आप बोलो खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाऊंगा, दास बन जाऊंगा तुम्हारे, तुम जैसे करोगे, तुम कहो नाचोगे तो मैं नाचूंगा. नित्यानंद प्रभु हिमसेल्फ सेज दैट. अभिमान शून्य निताय, अभिमान शून्य निताय न करे बेटा, अभिमान से शून्य नित्यानंद प्रभु का क्वालिटी. चलो चलो छोड़ो, ये नहीं सोचते, लेकिन ये सोच लो कि आप उसके धन को मांग करके उस पे सहाय, उसको सहाय कर रहे, आप उसकी करुणा कर रहे उस पर. क्यों? क्योंकि कुछ तो देगा भगवान की सेवा में, और जो कुछ भी देगा तो कम से कम वो धीरे धीरे आगे तो बढ़ सकता है कृष्ण भक्ति में. अरे प्रभु इसको हमारे आप तो केवल पैसा ही मांगते हो हमेशा, कुछ भी हो तो पैसा ही मांगते. अरे आप धन देने के अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मन दे दो, शरीर दे दो, पैसा मत दो, बट लेट अदर डिवोटी, अदर पीपल लेट सर्व कृष्ण, व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाई? एक बार वो हमारे आए थे डिवोटी, वो बता रहे थे कि द पर्सन हिज माइंड इज वेयर हिज मनी इज. मनुष्य का मन वहां होता है जहां पर उसका पैसा होता है. अगर उसने कहीं पर इन्वेस्ट करके रखा है, कहीं पर ज्यादा धन कहीं पर पड़ा है, किसी के पास पड़ा है, तो जनरली तो इसलिए अगर भगवान की सेवा में पैसा दिया हुआ है तो मन ऑटोमेटिक उनकी सेवा में चला जाएगा. बट एनीवे द आइडिया इज टू यूटिलाइज व्हाट एवर अ लिटिल समबडी कैन गिव इन कृष्ण सर्विस, दैट इज सकाम कर्मयोग. क्योंकि वो तो मंगला आरती में कभी आएगा नहीं जो रास्ते पे से गुजर, अभी तो नहीं आएगा कम से कम. चाहे उनका पालन नहीं करेगा, नवदा भक्ति नहीं करेगा, तो कुछ तो करेगा. तो दिस इज द आइडिया. सो आगे प्रभात कहते हैं अगर इतना भी कोई नहीं कर सकता है, इफ यू दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, तो फिर और भी कुछ तरीका बता रहे भगवान, और इसके नीचे निष्काम कर्मयोग से भी नीचे जा रहे. बढ़िए.
किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत के भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो.
तो गैदर ट्राई टू गिव अप द रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क एंड बी सेल्फ सिचुएटेड. So, Tattva starts, but it may be that one is unable to.
हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनावृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे. यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि वे है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करे या अन्य कठिनाइयां उठ खड़ी हो. जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या लगी हो उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे. ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित है. ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है. इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर पर उठता है. ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाड़ी कमाई का परित्याग करता है. यहाँ पर किसी भी संस्तुति की गई है क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बना बनाता है और उस विमल मन स्थिति में वह कृष्ण भावनावृत को समझने में समर्थ होता है।
सो कृष्ण भावनावृत को समझने का ये इनडायरेक्ट प्रोसेस कर रहा था, पहले डायरेक्ट प्रोसेसेस की चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये इनडायरेक्ट प्रोसेसेस भी है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक नहीं होती है कार्य, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष बोला गया है। तो इसलिए और ऐसा भी होता है कई बार हम लोग प्रत्यक्ष भक्ति के बदले अप्रत्यक्ष सेवा में ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि हमारा स्टेज ही नहीं है उतना, तो फिर भी वो अच्छा है, क्योंकि जो कुछ भी नहीं करेगा इससे तो अच्छा है कि कुछ करे। इसलिए प्रभुपाद और हमारे गुरुजन ये ध्यान रखते हैं कि अगर कोई भक्त प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ रहा है तो उसको अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ के रखे, ताकि उसके भक्ति में प्रगति हो सके, ये भावना है उसके लिए। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा कि कॉन्शियसनेस धीरे धीरे वो इम्प्रूव कर पाएगा। अभी ट्रायल में ऐसा है कि भगवान और भी नीचे के स्तर बता रहे हैं, ज्ञान एक अष्टांग योग की बात कर, बड़ो पढ़ो।
यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है।
तो भगवान बताते कि ज्ञान जो है वो निष्काम कर्म योग अगर आप नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करो कि आत्मा शरीर का अंत मान समझ लो कि आत्मा जो है वो शरीर से अलग है, इतना तो समझो, कम से कम इतना समझ लो। नहीं, इट इज टू स्टे इन दैट प्लेटफॉर्म इज इवन इन हार्डर फॉर पीपल, सो इसलिए भगवान बताते हैं कि ज्ञान हाउएवर बेटर देन नॉलेज इज मेडिटेशन। अगर हाउएवर का अर्थ होता है कि ज्ञान एकदम तुच्छ वस्तु है यहाँ पर, ज्ञान योग क्या कि मैं शरीर नहीं आता हूँ उस पर कार्य करना, दैट इज नॉट आस्क्ड बाय कृष्ण दैट यू सिचुएट योर सेल्फ इन ब्रह्मभूत स्टेज, ही इज जस्ट आस्किंग दैट यू नो दैट यू आर नॉट दिस बॉडी और सोल, यू नो, क्योंकि वो तो मुक्तात्मा बन जाएगा ना फिर, अगर वो आत्मा के शरीर पर आत्मा के स्तर पर काम करेगा तो। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लो, कनेक्शन इज लॉस्ट। अभी आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, हाँ तो आपको आप बता देना कभी भी डिस्कनेक्ट हो तो। ओके, सो ज्ञान से अच्छा है ध्यान, ज्ञान से अच्छा है निष्काम कर्म योग, क्योंकि फल का त्याग करने से मन को शांति मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर निष्काम कर्म योग को ज्ञान और अष्टांग योग दोनों से श्रेष्ठ माना गया है। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं
श्लोक 10 और 11 दोनों निष्काम कर्म योग के बारे में,
निष्काम कर्म योग
मेरे लिए कर्म करना और
वो उसके भी सकाम कर्म भी है उसमें, थोड़ा 11 में सकाम कर्म का भी बात आ रहा है, क्योंकि उसमें कुछ परसेंटेज दे दो, मिस थोड़ा अपने लिए रख लो, लेकिन यहाँ पर भगवान अंत में फिर से कह रहे कि सब कुछ दे दो, फल त्याग कर दो, फल का कामना मत करो, कर्म करो केवल ऐसे। तो इसके तात्पर्य भगवान कहते हैं इन समरी टू रीच द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हेड हाईएस्ट गोल देयर आर टू प्रोसेसेस, वन प्रोसेस इज बाय ग्रेजुअल डेवलपमेंट एंड द अदर प्रोसेस इज ट्रैक्ट सेटर शो द ट्रैक पर ये पढ़ते हो
जैसा कि पीछे सेकंड प्लेयर का
और जो सेकंड सब समरी सारा आंस
समरी टू रीच द सुपर हिंदुस्तान
संक्षिप्त सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है लेकिन यहाँ पर समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त था यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है उनके लिए तो त्याग ज्ञान ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है लेकिन जहाँ तक भगवद्गीता का संबंध है उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने की सलाह दी जाती है
तो प्रत्यक्ष विधि की बात ये 5 श्लोकों में भगवान ने बताया उसका तात्पर्य श्लोकों ने समराइज किया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि है लेकिन हमें प्रत्यक्ष विधि को पकड़ के रखना चाहिए अभी
जो
हाँ क्योंकि वो कर्ता मानने वाला व्यक्ति उसके फल का इच्छा करता है निष्काम कर्म है यहाँ क्योंकि वो ज्ञान युक्त कर्म है निष्काम कर्म इसलिए वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता वो फल को भगवान को दे देते हैं निष्काम कर्म और भक्ति योग में वो आता है कि वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता लेकिन वो कर्म भी भगवान का आदेश के अनुसार करता है चिंतन करते करते पत्रम पुष्पम फलम तो एम जो में भक्तिया प्रयोजी जैसे मैं एग्जांपल पहले बताया था एक बार कि एक व्यक्ति है जो कुकिंग करता है और फिर जो बन गया वो भगवान को अर्पण करता है दूसरा व्यक्ति है कि जो कुकिंग करते समय भी ये चिंतन कर रहा है कि भगवान के लिए क्या बनाओ कि भगवान को पसंद आएगा यू नो और कुकिंग करते समय भी भगवान का चिंतन करते हैं यू नो कृष्ण के लीलाओं का चिंतन करते हैं तो भक्ति हो गए उसमें उनको पहले से उनको ऐसा नहीं कि इसके कर्म के प्रभाव से मुक्त होने के लिए मुझे भगवान को भोग लगाना पड़ेगा वो भगवान के लिए ही बनाते हैं और उनका उद्देश्य नहीं वो खुद क्या खाएंगे उनका उनका चिंता नहीं तो इसलिए उस एक स्टेप डाउन हो जाता है निष्काम कर्म योग भक्ति योग से सो अभी जो डायरेक्ट प्रोसेस में लगा हुआ भक्त जो कृष्ण की सेवा में भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है या फिर बढ़ रहा है यहाँ तक कि प्रभुपाद तो कहते हैं कि जो भक्त निष्काम कर्मयोग या भगज्ञान योग अष्टांग योग चाहे ये सारे में सफलता भी मिल ले उससे भी प्रत्यक्ष मार्ग में जुड़ा हुआ साधन भक्ति करने वाला भक्त अच्छा है प्रत्यक्ष मार्ग में जुड़ा हुआ जो भक्त है वो चाहे सफलता नहीं मिली फिर भी योग ज्ञान अष्टांग योग उनसे अच्छा है इसलिए प्रत्यक्ष मार्ग में जुड़ना चाहिए और प्रत्यक्ष मार्ग जो है उसका वर्णन फिर वो उसको क्या सिम्टम्स है उसके वो भी आ गए यस साधन भक्ति डायरेक्ट प्रोसेस है यस साधन भक्ति से भी ऊपर पहला जो 8 श्लोक 8 में था वो स्पॉन्टेनियस भक्ति लेकिन वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है इसलिए साधन भक्ति इज ऑल्सो वेरी नियर टू इट तो अभी ऐसे भक्त में क्या सिम्टम्स होते हैं कैसे लक्षण होते हैं या फिर क्या लक्षण होने चाहिए किसी भक्त में इसका चर्चा अभी 35 गुणों का वर्णन आता है, 35 क्वालिटीज। तो अभी 2, 13 और 14 श्लोक है, दो पढ़िए, बहुत ही मधुर श्लोक है सुनने में।
जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है।
अदृष्ट सर्वभूता नाम मित्र करुण। तो ये श्लोक जो है इसको अगर एक एक करके अगर आप देखो तो भगवान का जो भक्त होता है वो सबसे पहले अद्वेष्ट होता है, किसी के प्रति द्वेष नहीं करता, ये उसका सबसे पहला क्वालिटी होता है, फर्स्ट क्वालिटी, और किसी के प्रति द्वेष नहीं करता है। क्यों द्वेष नहीं करता है? क्योंकि अद्वेष्ट सर्वभूतानां, क्योंकि वो जानता है कि हर एक व्यक्ति भगवान का अंश है। भगवान पहले बताया ना कि हम बीज प्रजापति, तो सभी भगवान के अंश हैं। कई बार वो ऐसा सोचता है कि हर एक भक्त अपने अपने साक्षात्कार के अनुसार भगवान की सेवा कर रहे हैं, कोई कृष्ण के बाल रूप में कर रहा है, कोई मित्र के रूप में कर रहा है, कोई किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को पिज्जा ऑफर करना है भगवान को, किसी को समोसा ऑफर करना है भगवान को। तो जिसको जो अनुकूल लग रहा है वो कर रहा है, लेकिन वो सबको भगवान का अंश देख रहा है, इसलिए द्वेष नहीं करता किसी के प्रति। द्वेष का अर्थ होता है किसी के प्रति एवर्जन, या फिर किसी के प्रति क्या कर सकते, उनकी उनकी प्रगति से
जलन,
जलन जलन दूसरा ही नाम है, द्वेष का दूसरा नाम है। लेकिन ईर्ष्या द्वेष वो बहुत करीब करीब है आसपास में, लेकिन द्वेष में आप उसकी प्रगति से प्रसन्न नहीं हो सकते। श्री प्रभुपाद कहते थे, मैं कल ही बात कर रहा था परसों किसी के साथ कि अगर कोई भक्त किसी और के भक्त किसी और भक्त की प्रगति से प्रसन्न नहीं होता है, थोड़ा सा भी उसको डिस्कम्फर्ट फील होता है प्रगति से, तो वो अभी भक्त नहीं बन पाया है। और उसको तो प्रभुपाद बोलते हैं कि वो तो कली का चेला है, जो धोती कुर्ता पहनता है, तिलक लगाता है और दूसरे भक्तों की इच्छा करता है, वो कली का चेला है, कली चेला। अर्थात प्रभुपाद एक साथ में ऐसे बोले कि वो भौतिकवादी मंडन साधारण कर्मी आदमी है। इसलिए कभी ईर्ष्या कभी नहीं करना। किसी भक्त का भक्त का स्वभाव है कि दूसरे भक्त की आध्यात्मिक प्रगति या उनकी आध्यात्मिक अचीवमेंट को देख करके आप प्रफुल्लित होने चाहिए, प्रसन्न होने चाहिए, ये इस भक्त का स्वभाव है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि क्यों इनको इतना कृपा मिल जा रहा, इनको गुरु महाराज इनको इनका क्यों इतना कृपा मिल रहा। और फिर बहुत बुरी चीज, द्वेष करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो उसके मन हमेशा उसका मन अशांत रहता है, बहुत बेचैन रहता है, और वो चिंतन ही करता रहता है उसका निरंतर। जैसे वो प्रभुपाद का एग्जाम्पल दिया था, दो ब्रह्मचारी थे, नदी क्रॉस कर रहे थे, संध्या हो गई थी, अंधेरा होने वाला था और बोट नहीं थी कोई, तो तैर के क्रॉस करने वाले, तो वहाँ पर किस पास में कोई जवान सुंदर कन्या वहाँ पर खड़ी थी और उसने ये दो ब्रह्मचारी को देखा और कहा कि आप मेरी सहायता कर सकते हो। बोले क्या सहायता करना है? तो बोले आप, मैं अकेली हूँ, ये नदी को क्रॉस करना है, मैं कैसे करूँगी क्रॉस, यू नो पूरा रात मुझे इधर रहना पड़ेगा, ऐसा सब बताया। तो पहले तो दोनों ब्रह्मचारी बोले देख पागलो, हम ब्रह्मचारी देखते नहीं, ब्रह्मचारी कभी स्त्री को स्पर्श करेगा, असंभव। लेकिन फिर दोनों ने वो ब्रह्मचारी स्त्री जो थी उसने बहुत रिक्वेस्ट किया वो लड़के ने, तो एक ब्रह्मचारी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो दूसरा ब्रह्मचारी, अरे क्या कर रहा है तू, तो ब्रह्मचारी है। तो कहा कि लेकिन तुम सोचो सही है, क्या करेंगे। तो ऐसा सब बात हुआ, बाद में जिसने हाँ बोला था वो ब्रह्मचारी ने उस कन्या को अपने कंधे पर डाल दिया और पूरा नदी क्रॉस कर दिया, नदी क्रॉस करके उसको छोड़ दिया अपने ठिकाने पर, और दोनों ब्रह्मचारी आश्रम में आए वापस। और वो दूसरा जो था वो तो कैसे दूसरे दिन सुबह पहुंच गया गुरु के पास, गुरु को जाके हाँ महाराज पता है इसने क्या किया, कल उसने एक लड़की को अपने कंधे पे बिठा के पूरा नदी क्रॉस किया। तो गुरु ने उनको कहा कि नदी क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, तो बोले पूरा 15 मिनट। तो गुरु ने कहा कि उसने तो 15 मिनट कंधे पे रखा फिर छोड़ दिया, तुम तो पूरा रात उसके तो अपने मन में उसको रखा हुआ है, सुबह तक अभी तक तुम्हारे मन में पड़ा है वो। तो यह का तात्पर्य ये है कि अगर आप द्वेष करोगे तो आपका मन बेचैन रहेगा, आप द्वेष करोगे तो आप उससे दुर्गुण ढूंढोगे। जो भक्त है द्वेष नहीं करता, उसका क्या गुण होना चाहिए, वो उसके सद्गुण देखेगा, दुर्गुण नहीं देखेगा। सद्गुण देखो, दुर्गुण तो सब में होते हैं ना, और ढूंढना भी आसान है। दुर्गुण ढूंढने में क्या चाहिए, टाइम लगता है, सद्गुण ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए सद्गुण देखो, जो अच्छा कर रहे हो देखो, बुरा तो सभी करते हैं लेकिन अच्छा कौन कर रहे हैं देखो। तो अदृष्ट प्रपद लेक्चर में बता रहे थे कि कृष्ण समोम सर्वभूतेषु है, अदृष्ट सर्वभूतानां, वो किसी के प्रति द्वेष नहीं करते। हाँ फिर भी जो मुझमें भक्त में दृढ़ गंभीर भाव से जुड़े हैं वो मुझे अधिक प्रिय है, ऐसा भगवान बताया। इस तरह से आप अद्वेष्टा स्वरूपूतानाम, सबके प्रति अद्वेष्टा है, आप किसका द्वेष नहीं करते, आपका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भगवान के भक्ति में अधिक आगे बढ़े हुए हैं उनके प्रति आपका आकर्षण अधिक हो सकता है। सो दैट इज ओके, दैट इज नॉट लो अदृष्ट स्वरूपूतान। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखा है, ही ईर्ष्यालु है, भगवान और भगवान के भक्तों के ईर्ष्यालुओं का संग नहीं करना है। इसका अर्थ नहीं कि हम अद्वेष्टा करें सर्वभूतानाम, इसका अर्थ कि भाई जो कोई कैसा भी है यू नो उसकी बात से, जैसे कौन मुझे कहा आज कोई कल बता रहा था कि वो बाबा है ये ओझा है इसकी इनकी बात, इनका लेक्चर हम सुन सकते हैं, भाई तुम कैसे सुन सकते हो, अद्वेष्ट सर्वभूतानाम, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम थोड़ी है ये, प्रिंसिपल का कोई बांध छोड़ प्रिंसिपल में तोड़फोड़ नहीं हो सकती, सिद्धांत में तोड़फोड़ नहीं, अद्वेष्टा का अर्थ आप उसका द्वेष नहीं करते, ये बात होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसका शरणागत हो जाओ, ये बात है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मित्र, नेक्स्ट वो सबके प्रति मित्रता रखता है, फ्रेंडली, दुश्मन नहीं है। हरे कृष्ण भी नहीं बोलूंगा, आना देव को वो इधर न उधर, अगर उसकी प्रशंसा होगी तो मैं उदास हो जाऊंगा, पता नहीं कब खत्म हो ये प्रशंसा हो रही है इसकी। दिस इज जल एनवी, मित्र होता है, मित्र का अर्थ होता है सबके प्रति मित्र का भाव। आपके ग्रुप का मेंबर है तो भी, आपके ग्रुप का मेंबर नहीं है तो भी, क्योंकि वो भगवान का भक्त है ना, प्रभुपाद से तो जुड़ा हुआ है ना, सोलह माला तो कर रहा है ना, आपकी बात नहीं सुन रहा है क्योंकि वो इस्कॉन में आपको खुश करने के लिए तो जुड़ा नहीं था। अभी उसको पता भी नहीं है कि आपको खुश करने से वो इस्कॉन में आगे बढ़ सकता है, वो तो उसको नहीं पता जो आप ऐसा मान रहे हो। इसलिए वो जो वो ऐसा मान के चल रहा होगा कि प्रभुपाद को और गुरु को प्रसन्न करने से आगे बढ़ा जाता है, तो फिर आप उसकी मान जो सोच है उसको रिस्पेक्ट करो। Nobody joins Krishna consciousness movement for my pleasure. मेरी प्रसन्नता के लिए कोई नहीं जुड़ता है कृष्ण भक्ति में, ये हमें सोचना चाहिए। I am here to serve Krishna. मैं गुरु और कृष्ण की सेवा करने के लिए इधर कृष्ण भक्ति में जुड़ा हूँ, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो मैत्री सबके प्रति मित्रता का भाव रखो। प्रभुपाद कहते हैं मैत्री ट्रीट देम जस्ट लाइक योर फ्रेंड, डिवोटी इज अ फ्रेंड टू एवरीवन, ही डज नॉट वांट टू किल इवन एन एंट और मॉस्किटो। प्रभुपाद कहते हैं कि मॉस्किटो को भी मत मारो, क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता ना। एक बार कौन बता रहा था, somebody was saying, anyway, I forgot who was saying. So, एक मॉस्किटो होता है, राधा गोविंद महाराज वॉज सेइंग, राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि मच्छर जो होता है वो काटने आता है, एक्चुअली उसको नहीं पता कि आप उसको पसंद नहीं करते। मच्छर को नहीं पता ये बात, आप उसको बोल दो कि तुम उसको पसंद नहीं करते तो शायद नहीं आएगा वो, लेकिन उसको पता नहीं है ना कि तुम पसंद नहीं करते उसको। उसको क्या पता ऐसा भी हो कि वो तुम भी खुश हो वो भी खुश है, ये जैसे नो एनीथिंग। अभी वो काटने आता है और आपको काटता है तो उसको तो पेट भरता है, तो अपनी अपनी भोजन के लिए प्रयास करना तो सबका काम है ना, भोजन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, बेचारा खाएगा क्या। अभी उसको अभी आप उसको मार देते हो, बोले मृत्यु दंड, तुमने मुझे चोट लगाई, हल्का सा डंस मारा, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या परिणाम है? मृत्यु दंड, तुम जीने के लिए योग्य नहीं हो। तो उसको मृत्यु दंड मत दो। तो इसलिए भी बोलते मारो मत, डोंट किल, उसको हटाओ, उसको उड़ा दो, या अपने पास व्यवस्था करो कि ताकि वो दूर भगे, दूर हट जाए, भाग जाए आपसे, पास में ना आए, ऐसा व्यवस्था करो। नहीं मारना बोले क्या है, वाई टू किल। मैं वहाँ पर था विदेश में, एक भक्त बोले, वो बार बार मुझे बोल रहे, आई एम अ ग्रेट सिंगर, आई एम अ ग्रेट सिंगर, क्यों? बोले बहुत मॉस्किटो मारता हूँ। तो इसमें गर्व की क्या बात है भैया, बहुत सारे मॉस्किटो, डोंट किल, why you are killing so many mosquitoes? So, the idea is, चींटी को भी दोष नहीं देता, चींटी को भी मारता नहीं, मच्छर की तो मच्छर चींटी उसको भी अपना मित्र मानता है, मित्र करुणा, because full of करुणा, उसके हृदय में बहुत करुणा है, हृदय उसका बहुत कोमल है, करुणा। वो चाहता है कि हर एक भक्त कृष्ण भक्ति का आस्वाद करे, वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो भगवान को नहीं जानता वो जाने, हर एक भक्त जो इस्कॉन के साथ जुड़ा हुआ है वो प्रभुपाद की सेवा में जुड़े और उसके हृदय में जो कचरा है वो साफ हो, यह करुणा उसके हृदय में रहती है। तो ये करुणा उसका प्रभुपाद करुणा के विषय में ऐसा भी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत संघ का विकास करना, उसका प्रचार करना, सारे विश्व में करना, दैट इज करुणा। इस संस्था को आगे बढ़ाना, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना, दैट इज करुणा, यू नो, हेल्प अदर्स बाय गिविंग देम कृष्ण कॉन्शियसनेस। मैत्री करुणा एवं चा निर्ममा, निर्ममा शब्द का अर्थ होता है कि वो अपने प्रोप्राइटरशिप का दावा नहीं करता, सब कुछ कृष्ण का, यू नो कृष्ण सबके स्वामी है, वो ऐसा मानता है, भोक्ता रब के तरह स्वाम सर्वलोक महेश्वर, वो ऐसा मानता है कि सब कुछ कृष्ण, मेरा कुछ अपना कुछ भी नहीं है, वो ऐसा मानता है। निर्ममा निरहंकार, निरहंकार का अर्थ होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, कृष्ण का सेवक। जब मैं शरीर नहीं हूँ तो शरीर से जुड़ी हुई कोई भी चीज मेरी नहीं है, तो निर्ममो निरहंकार। सम दुख सुख क्षमी, सम दुख सुख, सुख और दुख में समान भाव होता है। जैसे अभी मैत्र करुण था, और कोई कहेगा कि भाई उसको कोई पिटाई कर देगा, उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा, तो क्या होगा, वो क्या सोचता है, तत्ते अनुकंपा सुसमिक समान, भगवान की कृपा से मुझे तो बहुत सारा कष्ट मिलने वाला था, लेकिन भगवान ने उसको बहुत कम करके दिया। अगर कोई आपसे दुर्व्यवहार करता है तो ये नहीं सोचो कैसा आदमी है, बहुत दुष्ट आदमी है, ये है वो है, मैं उसको कुछ नहीं करूँगा, भगवान तो देख रहे हैं सब कुछ, वहाँ पर देर अंधेर नहीं है, उसका अवश्य उस पर कुछ तो होगा, कुछ परिणाम उसको मिलेगा, यू नो भगवान उसको भी सबक सिखाएंगे एक बार। आई वॉन्ट डू दिस, प्रभुपाद कहते कि भक्त ये भी नहीं सोचता, क्षमी सुख दुख सुख क्षमी, वो ये भी नहीं सोचता, क्योंकि वो भी एक रूप से तो कर्ज कर रहा है ना, श्राप देना, आप कर्ज कर रहे हो। अगर आप कहते हो मैं उसका बदला नहीं लूंगा, लेकिन भगवान
लेगा,
भगवान मेरी ओर से बदला लेगा, भगवान तो देख रहे हैं ना सब कुछ, तो ही विल डू समथिंग, वो उसको सबक सिखाएंगे। नो, भक्त ये भी नहीं सोचता, भक्त क्या सोचता है, मेरा ही कर्म ऐसा था कि मैंने पिछले दिन में इनको परेशान किया होगा, तो परिणाम यह है कि आज मुझे परेशान होना पड़ रहा है इनके माध्यम से, तो अच्छा हुआ ना, कर्म का अकाउंट में से थोड़े कर्म नष्ट हो गए, सो हैप्पी लाइफ टू गो अहेड, आगे सुखमय जीवन मिलेगा ना, क्योंकि अभी तो दुख वाला हिस्सा चला गया, तो सुखमय वाला जीवन मिलेगा ना। सो इसलिए डोंट ब्लेम अदर्स फॉर व्हाट पीपल बिहेव विद अस, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू यू नो डील विथ एवरीवन द वे वी वांट देम टू डील विथ अस। हमें हमेशा इसी प्रकार का व्यवहार लोगों से रखना चाहिए, जिस प्रकार के व्यवहार की आशा हम उनसे करते हैं। आप ये सोचो, अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे जैसा व्यवहार आप किसी के साथ करे, तो आपको कैसा फील होगा, बस वो हमेशा ध्यान में रखो व्यवहार करते समय, कीप दैट इन द माइंड एंड दैट वे यू बिहेव, तब आपको लगेगा कि यू नो यू कैन नॉट जस्ट यू नो यू आर नॉट अ प्रिंस दैट यू कैन डू व्हाट यू वांट। तो सुख दुख सम सुख दुख, सुख और दुख में समान रहता है। प्रभुपाद एक एग्जांपल दिया सुख दुख के लिए, ये मेरा शरीर भौतिक है, तो अगर मुझे उस शरीर को गर्मी लगती है तो एसी ऑन कर दिया, पंखा ऑन कर दिया, ठंडी आएगी तो बंद कर दिया, ठंडी आएगी तो और कुछ करेंगे, अब ज़्यादा ठंड लगेगी तो कम्बल डाल देंगे या फिर हीटर ऑन कर देंगे, यू नो दैट इज बिकॉज माई बॉडी इज मटीरियल, इसलिए पेन और प्लेजर जो है वो शरीर के कारण है। जो टॉलरेट कर सकता है ना, जिसमें टॉलरेंट पावर है, सहन करने की शक्ति है, केवल वही व्यक्ति क्षमा कर सकता है, सब क्षमा नहीं कर सकते। और क्षमा करना अपने आप में एक चैलेंज की बात है, किसी को क्षमा करना आसान नहीं होता है, बहुत जो क्या बोलते हैं क्षमा विरस्य भूषण ऐसा कुछ सुना है मैंने, तो वीर व्यक्ति जो होता है जनरली वो लोग क्या होते हैं को सीधा रिवेंज लेते हैं, वो क्षमा नहीं कर सकते। वीर के पास बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा भी है उनको उनके ईगो थोड़ा भी हिला दिया तो बात खत्म। दे विल रिएक्ट वेरी यू नो एग्रेसिव ये क्षत्रियों का। लेकिन उस वीर पुरुष जो वीर उसको बोलते हैं जो क्षमा कर सकता हो। सर मैंने एग्जांपल्स जैसे बहुत बड़ी बड़ी ग्रेव प्रॉब्लम्स होती है क्षमा कर दिया जाता है। तो इसलिए हमें भी समझना चाहिए, हालांकि सबसे पहली बात तो हमारे प्रति कोई अपराध कर ही नहीं सकता, नोबडी कैन ऑफेंड मी ऐसा सोचना चाहिए। क्यों वाय बिकॉज आई एम नॉट डिवोटी तो वैष्णव अपराध होगा ही नहीं, जब मैं वैष्णव होगा तो अपराध होगा। इफ आई एम नॉट डिवोटी व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस यू कैन मेक टू अस, पहले हिसाब से बात है। आई मीन दिस व्हाट आई लर्न। आई मीन लास्ट ईयर ऑल्सो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था गुरु जी को कि पब्लिक में हजारों लोग बैठे थे, कम से कम 2000 भक्तों में, 2500 भक्त मिनिमम। तो प्रश्न पूछा कि आपके प्रति अगर कोई अपराध करता है तो गुरु जी ने उनको उत्तर दिया, मेरा अपराध तुम कभी नहीं कर सकते, डोंट वरी, क्योंकि मैं अपराध लेता ही नहीं। तो मेरा तो अपराध होगा ही नहीं, लेकिन और किसी वैष्णव का अपराध मत करना। तो फॉरगेट अबाउट मी, डोंट वरी दैट यू विल ऑफेंड मी, बट यू वॉन्ट ऑफेंड, प्लीज डोंट ऑफेंड अदर्स, बिकॉज ही अदर्स में ही सेड दैट आई एम नॉट डिवोटी, यू कैन नॉट कमिट ऑफेंस टू मी। गुरु जी बोल रहे थे काम, आई मीन आई एम जस्ट शेयरिंग द एग्जाम्पल। द पॉइंट इज कि अपने आप को वैष्णव गिनोगे तब अपराध लगेगा ना, फिर क्षमा की बात आएगी। फिर भी अगर आपको हर्ट हुआ है किसी के व्यवहार से, सो क्षमा शब्द बोलने से, क्ष शब्द बोलने से पहले उसको क्षमा कर दिया जाए, ताकि वो क्षमा बोलने की जो एम्बरेसमेंट होती है, जो शर्म का अनुभव से बच जाए, उसको शर्म ना लगे क्षमा मांगने में, इसलिए उसको पहले क्षमा कर दो। Forgive him before he ask. So, क्षमा के पहले हमने बात कर लिया है किसको क्षमा करना किसको नहीं करना, इन चैप्टर 10 या अनुसार बात किया था, राइट। सो समर दुख सुख क्षमी, क्षमी का अर्थ है क्षमा करना। जैसे प्रहलाद महाराज ने क्षमा कर दिया था हिरण्यकशिप को, हालांकि उनके पिता थे जो असुर थे। फिर जीसस क्राइस्ट ने क्षमा किया था सबको। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। देन संतुष्ट, संतुष्ट का अर्थ होता है वो सेटिस्फाइड रहता है हमेशा, इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, क्योंकि उसको वो क्षमा क्यों कर सकता है, क्योंकि उसका मन विचलित नहीं है, वो संतुष्ट है अपने आपके पास, उसके पास जो कुछ है उससे। और सततम योगी निरंतर भगवान का राधा कृष्ण का चिंतन करता रहता है, क्योंकि जो जो भी पेन प्लेजर मिलेगा वो तो कृष्ण की इच्छा से मिलने वाला है, मेरा तो इसमें कुछ चलने वाला है नहीं। तो जो हो रहा है वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, सो वाई शुड आई बी डिस्टर्ब। सततम योगी निरंतर योग में स्थिर रहता है वो, कृष्ण की इच्छा से अपने जीवन को स्वीकार करता है। लेट मी सफर, कृष्ण वॉन्ट्स मी टू सफर, लेट मी सफर, easy, is very easy, dependent on Krishna, very easy. Satatam yogi, satatam yogi ka dusra arth ye bhi hai ki yogina abhi sarvesha magadha mantra ma, nirantar mera chintan mein laga hua hai. Dhrada nishchay, yatatma dhrada nishchay, dhrada nishchay ka arth hota hai ki sarva dharman pratyajya, sab prakar ke jo धर्म है उसका त्याग करके कृष्ण भक्ति, क्या बोलते हैं उसको, कृष्ण कर्म कैल सर्व कर्म कृत होय, श्रद्धा शब्द विश्वास को है सुदृढ़ निश्चय, श्रद्धा शब्द विश्वास को है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म कैले सर्व कर्म कृत। वो जानता है कि अगर मैं मेरी सोलह माला ढंग से करूंगा तो सारे प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएंगे, वो जानता है कि अगर मैं गुरु के आदेश का ढंग से पालन करूंगा तो मेरे सारे प्रॉब्लम अपने आप हो जाएंगे, और मुझे अगर ये कार्य मैं ढंग से कर सकता हूँ भगवान की सेवा, तो बाकी सारे जिम्मेदारियां जो है वो अपने आप परफेक्ट हो जाएगी। वो ऐसा नहीं सोचता है नहीं अगर ये करूँगा तो फिर वो रह जाएगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, नहीं, उसका दृढ़ निश्चय है कि ये करूँगा, कृष्ण का सेवा करूँगा, देन कृष्ण विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जैसे वो थे ना, क्या नाम, श्रीवास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु आकर उनको पूछा, श्रीवास तुम पूरा दिन कीर्तन में लगे रहते हो, तो तुम्हारा खाना पीने का व्यवस्था कैसे होता है, हाउ यू आर मेंटेनिंग योर फैमिली, तुम तो गृहस्थ हो तो तुम्हारा व्यवस्था कैसे होता है। तो श्रीवास ठाकुर ने तीन बार ताली बजाई, तो महाप्रभु बोलते इसका क्या अर्थ है, तीन बार ताली का अर्थ क्या है, हम समझे नहीं बताओ। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा मैं भगवान की सेवा में जुड़ा हुआ हूँ, कृष्ण कीर्तन में जुड़ा हुआ हूँ, अगर भगवान एक दिन खाना पीना नहीं देंगे तो उपवास कर लूंगा, अगर मेरी व्यवस्था नहीं करेंगे तो दूसरा दिन मैं वेट करूंगा, तीसरा दिन मैं वेट करूंगा भगवान की कृपा का, तीन दिन तक कृपा नहीं मिलेगी तो गंगा में जाके डुबकी मारूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, आई मीन दादर वे। तो कहने का अर्थ है कि वो कृष्ण के प्रति इतना दृढ़ विश्वास है उनका कि मैं अगर कृष्ण कर्म करूंगा, सोलह माला जप, चार नियम का पालन, गुरु महाराज की आदेश का पालन, सेवा, वैष्णव की सेवा, भक्तों का संग, बस ये करूंगा तो अपने सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, ये विश्वास होता है उसका, दृढ़ निश्चय, ये तो अपना दृढ़ निश्चय, फर्मली कन्विंस्ड। मैं अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि वो निरंतर मुझ में मेरे चरण में स्थिरित रखते है, भगवान कहते हैं ज्ञान अवस्थित तब कृतेन मनसा पश्यंतीयम योगिनः। वो निरंतर राधा कृष्ण गोणिताय कृष्ण बलराम इनका चिंतन करता रहता है, तो ऐसा भक्तिमान जो होता है, ऐसा भक्ति भक्त जो होता है, भगवान कहते हैं वो मुझे बहुत ही प्रिय है। तो ये सारी क्वालिटीज का हम संक्षेप में वर्णन किया, डिटेल में टेक्स लॉट ऑफ टाइम, so we spoke a little for all, so let us go further charging।
जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है।
हाँ, जिसको किसी से कष्ट नहीं पहुंचता और जो किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, by whom no one is put into difficulty, भक्त किसी को कष्ट में डालता नहीं, ऐसा नहीं कि भाई ये भक्त के कारण उसका कहने का आदेश का पालन किया और ऐसी सिचुएशन आ गई कि बहुत परेशान, हम बहुत परेशान हो गए, तो किसी को कष्ट में नहीं डालता, और साथ ही साथ वो इज नॉट डिस्टर्ब बाय अदर्स, किसी के द्वारा वो डिस्टर्ब नहीं होता। कई बार हमारे भक्त लोग हमारे पास आके कहते हैं कि मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे रिश्तेदार ने मेरे साथ ऐसा किया, ये डिवोटी ने मेरे साथ ऐसा किया, प्रभु जी दिस इज हाइट, आई हाउ कैन आई मैनेज दिस, इसको मैं कैसे मैनेज करूँ, बट वाई यू आर सो मच डिस्टर्ब, आप इतने विक्षिप्त क्यों हुए हो, इट हैज नथिंग टू डू विथ यू। तो भक्त कभी विक्षिप्त नहीं होता, हु इज इक्विपोज्ड इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, सुख दुख में समान रहता है, भय में और चिंता में भी समान रहता है, ये उसका क्वालिटी है। भयभीत होता है तो हरिनाम छोड़ नहीं देता, चालू रखता है, चिंतित हो जाता है उसके पास कई बार होता है फिर धन की कमी आ गई अचानक से, स्कर्सिटी बहुत, तो क्या करेगा वो, माला का जप नहीं करेगा, फिर करेगा वो, उसको क्या लेना देना, दिस आर ऑल कम्स एंड गो, आता रहता है जाता रहता है, इससे हमें क्या, वी शुड कंटिन्यू अवर साधना भक्ति। फिर नेक्स्ट,
मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध दुशुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है।
तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो कोई साधारण प्रकार की कार्य में नहीं जुड़ता, जैसे कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी, उस पर आधारित नहीं है। उस पर सो जैसे भौतिकवादी व्यक्ति साधारण अपने कर्मों के ऊपर उसको पूरा निर्भर रहता है, वो भगवान पे निर्भर रहता है। भगवान का भक्त जो होता है, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन देम, वो शुद्ध है। शुद्ध का अर्थ होता है कि वो मन से और शरीर से दोनों से शुद्ध होता है। मन से भगवान के नाम के द्वारा, और शरीर से कैसे शुद्ध होता है, दिन में कम दो बार स्नान करके। प्रभुपाद बताया कम से कम दो बार स्नान करना चाहिए दिन में, सुबह और शाम दोनों बार, ऐसे प्रयास रहना चाहिए रोज प्रतिदिन। शुद्धता रिक्वायर है बॉडी को, फिर वो एक्सपर्ट होता है, दक्ष। दक्ष दक्ष का अर्थ क्या होता है कि वो फिलोसॉफी जानता है, कंसेप्ट जानता है, वो फिलोसॉफी में एक्सपर्ट होता है, केयर फ्री होता है। प्रभुपाद केयर फ्री का भी लिखते हैं कि डिवोटी नेवर टेक्स पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी, देयरफॉर इज केयर फ्री। वो किसी पक्ष में नहीं जुड़ता, वो म्यूचुअल, वो न्यूट्रल रहता है, इसलिए वो विचलित नहीं होता, केयर फ्री रहता है वो। फ्री फ्रॉम ऑल पेन्स, इज नेवर पेन बिकॉज इज फ्री फ्रॉम ऑल डेजिग्नेशंस। उपाधि लेता ही नहीं, तो उपाधि का दो अर्थ है ना, उपाधि का अर्थ है पेन, और उपाधि दूसरी का दूसरा उपाधि है डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन लेगा तो पेन होगा ना, डेजिग्नेशन ही नहीं लेता वो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सोचता ही नहीं, मैं तो दास हूँ भगवान का। बॉडीली पेन है सारे, और नॉट स्ट्राइविंग फॉर सम रिजल्ट। प्योर डिवोटी डज नॉट एंडेवर फॉर एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस। जैसे मंदिर का निर्माण करना, बहुत शक्ति डाल देना, तो इसलिए भगवान का भक्त होता हुआ इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े कार्य में जुड़ता नहीं है। एंड डिवोटी डज नॉट टेक टू सच बिजनेस इफ इट डज नॉट बेनिफिट हिम बाय एडवांसिंग हिज डिवोशनल सर्विस। He may construct a temple for the Lord, but for that he may take all kinds of anxiety, but he does not construct a big house for his personal endeavor, you know. वो अपने लिए बहुत बड़ा आलीशान महल तैयार करने के पीछे नहीं पड़ा होता है। ये छोटी छोटी बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिवोटीज इतनी छोटी बात को कंसेप्चुअली ठीक से समझते नहीं है ना, तो बड़े लेवल पर भी ये गलती कर बैठते हैं। So this required to shape, it is very important for us to shape this in our consciousness. फिर आगे पढ़िए।
जो ना कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है।
तो भगवान कहते हैं यहाँ पर जो शोक नहीं करता, हर्षित नहीं होता, पछताता नहीं, और इच्छा भी नहीं करता,
शुभ अशुभ।
तो ये क्वालिटीज आगे भी भगवान ने थोड़ा इसका चर्चा किया था। ये इसमें शुभाशुभ प्रभात से एक जगह पॉनिंग वॉक में प्रभात कह रहे थे कि आई वॉज थिंकिंग आई हैव कम हियर, हाउ विल दे रिसीव मी, एज सून आई से नो मेडिटिंग, नो गैम्बलिंग, नो सेक्स, इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, दे विल रिप्लाई प्लीज गो होम स्वामी, यू डोंट प्रीच हियर। ऑल राइट, सो फॉर वन ईयर आई वॉज देर वॉज नो सक्सेस, मुझे कोई सफलता नहीं मिली एक साल तक, और मैं बार बार जाता था शिपिंग कंपनी के पास कि नेक्स्ट शिप कब जाने वाली, नेक्स्ट तो साहब वो बोल, उसने मैनेजर ने बोला स्वामी जी आप बार बार आते हो, बार बार पूछते हो लेकिन कभी जाते तो हो नहीं। तो मैंने उनको कहा कि मैं हाँ जब जब मैं बहुत निराश हो जाता था तो मैं तुम्हारे पास आके पूछ लेता था कि नेक्स्ट ट्रिप कब होने जाने वाला है, लेकिन जब मैं वापस जाता था तो सोचता था कि और एक बार प्रयास करके देख लो, और एक दो महीना प्रयास करके देख लो। सो इट वॉज गोइंग लाइक दैट कि मेरे पास सहायता कर, मुझे सहायता करने वाला कोई नहीं था। प्रभुपाद से तो शुभाशुभ ये दोनों से मुक्त। और आगे प्रभुपाद ने बताया अनपेक्ष न्यूट्रल, न्यूट्रल का अर्थ होता है यू नो डिपेंड ऑन कृष्ण। सो यस 18-19
जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए सम्मान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगत संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है।
तो प्रभुपाद कहते हैं कि तात्पर्य पढ़िए, उसमें सारे सारे पॉइंट आ जाते हैं।
भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख के ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है।
तो इसका एक एक करके यूज करो तो मौनी क्यों कहा है, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति के विषय में बोलता है और कुछ नहीं बोलता। भगवान की कथा करने तो बहुत बोलता है, दो दो घंटा तीन तीन घंटा बोलता है, लेकिन अगर वो कृष्ण कथा नहीं हो रही है तो चुप पड़ा रहता है, आवाज बोलेगा भी नहीं कुछ। फिर
मौनी का अर्थ यह नहीं है कि वह बोले नहीं, अपितु वो यह कि वह अनर्गल अलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी
आवास की सुविधा के लिए प्रभुपाद जाते थे कई बार विदेश में, तो पैलेस में रहते थे, बड़े बड़े पैलेस में, इतनी सारी सुविधा होती थी। और जब वृंदावन में पहली बार आए तो उनके शिष्य जो अमेरिकन शिष्य थे, वो देखा प्रभुपाद का एक छोटा सा कमरा था और उसमें कोई पंखा भी ठीक नहीं था, लाइट भी नहीं था, उस लाइट में एक लाइट के बदले वो एक नंगा बल्ब लटक रहा था, ऐसे टिंगा हुआ था, उसका प्रकाश आ रहा था। और वह कोई सोचे कि स्वामी जी इतना सरल रहते, इतना इजी, इतना कोई अपीरेंस नहीं, नो अपीरेंस। और प्रभुपाद बहुत संतुष्ट है, सो हैप्पी। अनिकेत शब्द का अर्थ है जिनका निवास स्थान नहीं रहेगा। तो प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद को मायापुर में जब थे तो प्रभुपाद घास की कुटिया में रहते थे, तो कहे स्वामी जी आप इंटरनेशनल सोसाइटी के फाउंडर आचार्य हो, आपके इतने सारे शिष्य हैं, इतने सारे मंदिर हैं, आप घास की कुटिया में रहते हो। तो प्रभुपाद ने कहा कि मुझे तो ये ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये सतोगुणी है, वो सब पैलेस जो है वो मुझे, वो रजोगुणी होते हैं, बहुत बहुत हाई फाई जो मकान और पैलेस। फिर प्रभुपाद ने कहा क्योंकि हमें ये सब बनाना पड़ता है लोगों के लिए, ताकि लोग कंफर्टेबल सिचुएशन फील करेंगे और हमारी बात को सुनेंगे, प्रचार के लिए ये सब करना पड़ता है, लेकिन मुझे तो मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो कुटिया में सही हूँ। तो प्रभुपाद जैसे भुवनेश्वर का मंदिर किसी ने देखा हो आपने, भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में जब प्रभुपाद के समय पर मंदिर था तो गौर गोविंद महाराज बना रहे थे, तो उस समय दिन में भी कोई नहीं जाता था उस मंदिर में, दिन में भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर सांप और ये सब का परेशानी तो था ही, और डाकू लोग भी आते थे, दिन में आते थे, तो कोई उधर जाता नहीं था। तो ऐसे स्थान में स्वामी जी को कैसे रखे प्रभुपाद को, तो गौर गोविंद महाराज वहां पर छोटा सा कुटिया बनाया था प्रभुपाद का, लेकिन सब शिष्य ने प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद बहुत रिमोट एरिया में है और कोई ज़्यादा भी नहीं और इतना सेफ भी नहीं है, तो आपको हम बाहर किसी होटल में रखते हैं, आप वहाँ रहो बाहर और आपको हम ले जाएंगे लाएंगे, विल डू दैट ऑल। सो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, मैं मेरे शिष्य ने जो बनाया गौर गोविंद स्वामी जी उस समय उन्होंने बनाया, मैं वहीं पर जाके रहूँगा उसके कुटिया में उसने जो बनाया उसमें, हालांकि वो कुछ भी नो नॉट बिल्कुल फर्निश्ड नहीं था, कच्चा था छोटा सा कुटिया, एंड प्रभुपाद उसमें रहे जंगल के बीचों बीच। तो प्रभुपाद के लिए अनिकेत, वो रहे एक साल पे उनका रहने का ठीक नहीं होता, वो कहीं पर भी रह सकते हैं, दैट इज द वे ऑफ डिवोटी, यू नो दे आर नॉट अटैच विथ यू नो फैसिलिटीज।
कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलना में
आपने देखा ना उनका घर और महल कुल पहले सब गोल्ड,
हाँ
उनका घर भी जो रहते थे जंगल में,
तो पैलेस ऑफ गोल्ड जो बना हुआ है न्यू वृंदावन में, अभी हम गए थे वहाँ पर, तो पैलेस ऑफ गोल्ड तो कितना ऑपुलेंट पैलेस है, पैलेस ऑफ गोल्ड बहुत सुंदर जगह है,
जो हिल पे बना हुआ है,
हिल पे बना हुआ है
वर्जीनिया,
वर्जीनिया में, तो हमने पूरा देखा वो पैलेस, सो ऑपुलेंट। तो फिर बाद में हम गए जहाँ प्रभुपाद तो उस पैलेस में कभी रहे ही नहीं है, पैलेस ऑफ गोल्ड में, लेकिन प्रभुपाद जहाँ पर रहते थे वो स्थान पर हम गए जो उसके सामने दूर दूर था दूसरी जगह पर, तो वो छोटा सा मकान, छोटा सा मकान जिसमें कोई फर्नीचर नहीं, और प्रभुपाद छत पे, छत फर्स्ट फ्लोर पे सोते थे, फर्स्ट फ्लोर पे जिसमें एक लकड़ी का छोटा सा बेड था सोने के लिए, और छत भी ऐसा नहीं था, नीचा छत था नीचा, और ऐसे ऐसा शेप वाला, सो नो आई मीन ऐसा लगेगा ही नहीं कि इज दैट समथिंग वेरी यू नो इजी टू स्टे विथ, ऐसे में प्रभुपाद रहते थे, प्रभुपाद ऑलवेज लाइक दिस। प्रभुपाद बताया कि इतने सारी व्यवस्था मेरे पास सुविधा है, लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था क्योंकि मैं एक स्थान पर 8 दिन से ज़्यादा रह ही नहीं पा रहा हूँ, आई कॉन्ट स्टे मोर देन 8 डेज एट वन प्लेस। ओके सो नेक्स्ट श्लोक,
नेक्स्ट, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है।
हाँ, तो जितने भी क्वालिटीज अलग अलग श्लोकों में बताए, वो सारे क्वालिटीज जब एक ही भक्त में होता है तब भगवान कहता है कि वो भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जो अलग अलग श्लोकों में बताए सारे क्वालिटीज एक भक्त में हो, सो ऐसा इसका तात्पर्य है कि हमें इस प्रकार का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, जितने भी क्वालिटीज बताए वो सब, हालांकि उसमें से भी सब नहीं मिलता तो थोड़ा भी अगर कोई इसको मिलता है तो भी कोई प्रॉब्लम, फिर भी वो आगे बढ़ सकता है। सो Should the Prabhupada summarize this chapter? In this chapter from verse 2, पढ़िए।
इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मैयावेश मनो ये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर ये तू धर्मामृत इदम, नित्य सेवा इस धर्म को तक, भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनमें लगे हुए व्यक्ति को भी को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में, भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगीत से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनता है और तब वह उसे श्रद्धा आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति की विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतः एव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति की आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संतुष्टि उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्मफल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
सो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस तरह से भक्त पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में तन्मय रहता है और साकार उपासना वाला भक्त सर्वश्रेष्ठ है। और जो गुणों का वर्णन अभी हमने सुना भगवान ने किया 12वें अध्याय के अंतिम कुछ श्लोकों में, ये सारे गुण हम सब के लिए हैं। हमें इन गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए और जो सभी गुणों को विकसित कर पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये सारे गुणों को अगर एक एक करके अगर हम नहीं विकसित कर पाए तो कोई बात नहीं, केवल गुरु के आदेश का ढंग से पालन करो, अपने आप सारे गुण प्रकट हो जाएंगे। गुरु का आदेश नवदा भक्ति प्रभुपाद की जो शिक्षा है उसको ठीक से पालन करो और भक्तों की सहायता करो। जैसे अभी देखा अद्वेष्टा सर्वभूतान मैत्र करुणा, ये सारे गुण है तो जब हमारे व्यवहार में कभी कभी कोई समस्या आती है भक्ति की विधियों में या फिर, तो हमें भक्तों की सहायता करनी चाहिए, गुरु की सहायता करनी चाहिए कि हम किस तरह से भक्ति में आगे बढ़े। गलती करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती करना, लेकिन गलती को छुपाना ये गलत बात है। आप समझे, गलती करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन वो आप ठीक कर सकते हो, लेकिन गलती को छुपा करके ढोंग करना ये गलत बात है। इसलिए गुरु के सामने भक्त के सामने चीज़ों को स्पष्ट रूप से बताया करो जिससे आपकी जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो ठीक से हो सकता है। तो इस तरह से हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का उद्देश्य लेकर ही जीना चाहिए, बाकी सारे उद्देश्य बेकार है। सो सॉरी, ये हमने थोड़ा एक्सटेंड किया 15 मिनट, बट वी आर गोइंग टू हैव अनदर कपल ऑफ वीक्स ब्रेक, 2 वीक का ब्रेक होएगा। सो प्लीज गो अहेड विथ योर एसेस इफ यू गेट सम टाइम, और उसके लिए आपको जो जानकारी चाहिए वो डेटा सकअप देंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टॉप।